आप सभी श्रोताओं को, सभी सुधी दर्शकों को मंगल नसीम की ओर से बहुत बहुत नमस्कार, आदाब। आइए दोस्तों, आज की इस खूबसूरत महफिल का आगाज़ करें। मैं आवाज़ देता हूँ गज़ल की एक बहुत खूबसूरत गज़लकारा। गज़ल के बारे में कहा गया, गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज देना, ज़रा उम्रे रफ्ता को आवाज़ देना। आइए आवाज़ देते हैं गज़ल की एक बेहद पुख्ता पाया और बड़ी खूबसूरत सी शख्सियत कमल धमीजा को। कमल धमीजा जी, आप सादर आमंत्रित हैं गज़ल पाठ के लिए।
एक गज़ल आपके सामने पेश करती हूँ। उसे ख्वाबों में लाना चाहती हूँ, उसे ख्वाबों में लाना चाहती हूँ, मैं खुद को आजमाना चाहती हूँ, मैं खुद को आजमाना चाहती हूँ, उसे ख्वाबों में लाना चाहती हूँ, उसे ख्वाबों में लाना चाहती हूँ, मैं खुद को आजमाना चाहती हूँ, जो दिल में है बताना चाहती हूँ, जो दिल में है बताना चाहती हूँ, तुझे पागल बनाना चाहती हूँ, तुझे पागल बनाना चाहती हूँ, उसे ख्वाबों में लाना चाहती हूँ, उसे ख्वाबों में लाना चाहती हूँ, मैं खुद को आजमाना चाहती हूँ, तुझे तुझसे चुराना चाहती हूँ, तुझे तुझसे चुराना चाहती हूँ, मैं खुद को भूल जाना चाहती हूँ, मैं खुद को भूल जाना चाहती हूँ, उसे ख्वाबों में लाना चाहती हूँ, उसे ख्वाबों में लाना चाहती हूँ, मैं खुद को आजमाना चाहती हूँ, तेरी ख्वाबों में आके जान जाना, तेरी ख्वाबों में आके जान जाना, तेरी नींदें उड़ाना चाहती हूँ, तेरी नींदें उड़ाना चाहती हूँ, उसे ख्वाबों में लाना चाहती हूँ, उसे ख्वाबों में लाना चाहती हूँ, मैं खुद को आजमाना चाहती हूँ, मैं एक प्यासी नदी हूँ और अब मैं एक प्यासी नदी हूँ और अब मैं समंदर में समाना चाहती हूँ, समंदर में समाना चाहती हूँ, उसे ख्वाबों में लाना चाहती हूँ, उसे ख्वाबों में लाना चाहती हूँ, मैं खुद को आजमाना चाहती हूँ, मुझे मालूम है तू बेवफा है, मुझे मालूम है तू बेवफा है, गले फिर भी लगाना चाहती हूँ, गले फिर भी लगाना चाहती हूँ, उसे ख्वाबों में लाना चाहती हूँ, उसे ख्वाबों में लाना चाहती हूँ, मैं खुद को आजमाना चाहती हूँ, मैं खुद को आजमाना चाहती हूँ, मैं खुद को आजमाना।
उसे ख्वाबों में लाना चाहती हूँ, मैं खुद को आजमाना चाहती हूँ। आप लोग सुन रहे थे कमल धमीजा को, बहुत खूबसूरत अशार, बहुत खूबसूरत मुरस्सा गज़ल। दोस्तों, लिखना दो शैलियों का होता है, छंद युक्त और छंद मुक्त। कुछ लोगों का मानना ये है कि अच्छी और बड़ी कविता छंद युक्त कविता होती है, लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं। छंद मुक्त फ्री वर्स कविता में भी जिन्होंने काम किया है, कई बार बड़ा खूबसूरत बड़ा मेयारी काम सामने आता है। आइए हम लोग फ्री वर्स की छंद मुक्त की एक कवयित्री को आमंत्रित करें और उन्हें सुने और पहचाने जाने कि छंद मुक्त कविता में भी बहुत खूबसूरत कहा जा सकता है। उसकी जीती जागती मिसाल निर्देश निधि जी।
इतनी सुंदर भूमिका के साथ मुझे यहाँ बुलाने के लिए नसीम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबके आदरणीय हैं, मेरे भी हैं। मैं यहाँ एक ऐसी कविता कहने जा रही हूँ, एक ऐसी समस्या के ऊपर अपनी बात रखने जा रही हूँ। जाहिर है फ्री वर्स में छंद मुक्त कविता है मेरी। देश की बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, परंतु मैं जिस समस्या के विषय में कह रही हूँ वो सारे संसार की समस्या है। अपनी बात कहती हूँ। पंच तत्व। दोस्तों, इंसान का शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, हम सभी जानते हैं। उसमें एक तत्व जल है। सबसे महती भूमिका जल की है और हमारे पर्यावरण में आज जल के साथ जो हो रहा है, जो अत्याचार हम कर रहे हैं अपनी नदियों के साथ, अपने तालाबों के साथ, वो हम सब जानते हैं। अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, मैं वह कहना चाहती हूँ। पंच तत्व ही तो थे मेरी निर्मिति के आधार। पंच तत्व ही तो थे मेरी निर्मिति के आधार। कहते हैं कि वे कभी चुकते नहीं, कहते हैं कि वे कभी चुकते नहीं। असंतुलित तो कभी होते ही नहीं, तभी शरीर बन पाता है। असंतुलित तो कभी होते ही नहीं, पर चुक रहे हैं तालाब, सूख रही हैं नदियाँ, सूख रहा है पंच तत्वों का मुखिया जल, और पसार रहा है अगन पाखी पर। घुट घुट दम तोड़ रही है हवा, हृदय हीना हो रही धरा, लंपट हो रहा आकाश, मैं डरी सहमी सी देख रही हूँ। अपनी देह से बूंद बूंद रिश्ता तत्व जल, कितनी भयावह देख रही हूँ मैं खुद को। सूखे अकड़े दंड से जल के बिना, कितनी भयावह देख रही हूँ मैं खुद को। सूखे अकड़े दंड से मात्र एक तत्व के बिना, मात्र एक तत्व के बिना अधूरे तत्वों में। क्या यूं ही झरने लगेंगे मेरी देह से एक एक कर सब तत्व, और फिर मैं नहीं ले सकूंगी कोई आकार। कहते हैं कि शरीर मिलता है तभी हम मुक्ति पा सकते हैं, अगर शरीर नहीं तो हम मुक्ति भी नहीं पा सकते। और फिर मैं नहीं ले सकूंगी कोई भी आकार, आकार जो होता है मुक्ति पथ का द्वार, आकार जो होता है मुक्ति पथ का द्वार। भटकती फिरूंगी यूं ही निराकार। बात यहीं ख़त्म हो जाती तो फिर भी ठीक था, बात यहीं ख़त्म हो जाती तो फिर भी ठीक था, पर पंच तत्व तो एक एक कर झरने लगेंगे सभी की देहों से एक दिन, देखना। धन्यवाद।
मित्रों, अभी हम लोग सुन रहे थे निर्देश निधि जी को। उनकी कविता में आध्यात्म और दर्शन सुंदरतम मिश्रण का एक जीता जागता सबूत थी ये कविता। पंच तत्व, उनका संयोजन, उनका विखंडन बहुत खूबसूरती से उन्होंने कहा। मुझे याद आता है बहुत बड़े शायर पंडित बृज नारायण चकबस साहब ने एक शेर कहा, मुझे ये कविता सुनते हुए बार बार उनका ये शेर याद आ रहा था। उन्होंने कहा कि जिंदगी क्या है, अनासिर का जहूर तरतीब, तत्वों का एक सीरियल में लग जाना, तत्वों का एक तरकीब में लग जाना और उसका दिख जाना, ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी क्या है? अनासिर का ज़हूर तरतीब, मौत है नाम उन्हीं अज़ज़ा का परेशान होना। पंच तत्व जब एक सीरियल में लग जाते हैं तो एक जीवन सामने आता है, और जब एक उनका कहीं से कुछ तरतीब बिगड़ जाती है उसे हम लोग मौत कहते हैं। बहुत बहुत बधाई निर्देश निधि जी इतनी सुंदर कविता के लिए। अब मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूँ वो भी छंद मुक्त कविता का एक और सुंदर उदाहरण है। बहुत मन को छूती हुई बड़ी हृदय स्पर्शी कविता उनके यहाँ से मिला करती है सुनने वालों को, और मैं बड़े बड़े स्नेह, चूँकि मुझसे बहुत छोटी हैं, मैं उन्हें बड़े स्नेह और बड़े ममत्व के और बड़े अपनत्व के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भूपेंद्र कौर जी आएँ और रचना पाठ करें।
मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मंगल नसीम सर की, जिन्होंने मुझे इतने प्यार और इतने स्नेह के साथ बुलाया, और वैसे भी बहुत प्यार मुझे इनसे मिलता ही रहता है। तो कुछ मुक्तक रखती हूँ आप सबके सामने। जिंदगी एक खेल है, जिंदगी एक खेल है, जी कर दिखा दे तू। जिंदगी एक खेल है, जी कर दिखा दे तू। सवाल जो उठते हैं तेरे दिल में, सवाल जो उठते हैं तेरे दिल में, जवाब उनका देकर बता दे तू। याद कर खुद को, याद कर खुद को, बता दे कौन है तू। याद कर खुद को, बता दे कौन है तू। तेरी पहचान है क्या, जमाने को बता दे तू। जिंदगी एक खेल है, जी कर दिखा दे तू। चुप क्यों है, चुप क्यों है, इतने जख्मों को सह कर भी। चुप क्यों है तू इतने जख्मों को सह कर भी। हर जख्म का हिसाब उंगलियों पर गिन कर बता दे तू। जिंदगी एक खेल है, जीत कर दिखा दे तू। है आदत क्यों तुझे, है आदत क्यों तुझे, पल पल मर कर जीने की। है आदत क्यों तुझे, पल पल मर कर जीने की। हरा दे मौत को भी, हरा दे मौत को भी, जिंदगी जी कर दिखा दे तू। जिंदगी एक खेल है, जीत कर दिखा दे तू। जकड़े हुए हैं सभी बेड़ियों में, जकड़े हुए हैं सभी जिंदगी की बेड़ियों में, तोड़ कर इन बेड़ियों को खुल कर बाहें फैला दे तू। जिंदगी एक खेल है, जीत कर दिखा दे तू।
हम लोग सुन रहे थे भूपेंद्र कौर जी को। जिंदगी ख्वाब है, जी कर दिखा दे तू। बहुत ही आसान लफ्जों में, बहुत ही सहल अल्फाज में उन्होंने अपनी बात का प्रेषण किया, हम तक पहुंचाई, आप लोगों तक पहुंचाई। और अब मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूं, उनके काव्य के कई रूप हैं। कभी वो गंभीर लेखन में होते हैं तो कभी तंजो मिजाह में, हास्य वंग में भी उनका उतना ही कलम सुचारू है। और पाया ये गया कि वो जब भी कभी अपनी प्रस्तुति लेकर आते हैं तो एक नई बात और एक नया तंज, चाहे वो व्यंग हो तो नया व्यंग, अच्छी तरह से जो मन को अच्छी तरह से उतरे, मन में उतरे, ऐसे रचनाकार श्री मदन लाल राज जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, आए और रचना पाठ से हम सब लोगों को आनंदित करें। श्री मदन लाल राज।
बहुत बहुत धन्यवाद नसीम साहब, आपने जो आशीर्वाद दिया। साथियों, मैं आपके सामने एक दो छोटी छोटी रचनाएं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरे मित्र हैं दीपक, उनके नाम से प्रभावित होकर के मैंने उनको एक पत्र लिखा कि दीपक तुम जलते जाना, तम का अवसान होगा, और अब नहीं हरसेगी तुझको अंबर को गुमान होगा। कि दीपक तुम जलते जाना, तम का अवसान होगा, अवनी हरसेगी तुझको अंबर को गुमान होगा। तो दीपक का जो है पत्र आया मेरे पास जवाब के रूप में। वो कहता है कि फोकट में जलता जाऊं, बापू के अरमानों को नुकसान होगा, बापू के अरमानों को नुकसान होगा, कि फोकट में जलता जाऊं तो बापू के अरमानों को नुकसान होगा, और इकलौती लड़की से ब्यारा चाहूं जिसका दिल्ली में मारुति संग मकान होगा, मारुति संग मकान होगा। दूसरी रचना है कि सच्चा दोस्त वही होता है जिसे देखते ही पत्नी कहे आ गया कमीना। सच्चा दोस्त वही होता है जिसे देखते ही पत्नी कहे आ गया कमीना, मेरे पति को बिगाड़ के रखा है, लफांगा है, लुच्चा है, लुक्का है। सच्चा दोस्त वही होता है जिसे देखते ही पत्नी कहे कि आ गया कमीना, मेरे पति को बिगाड़ के रखा है, लुच्चा है, लफंगा है, कमीना है। बड़े घर से हूँ, खानदानी घर से हूँ, इसलिए रह रही हूँ, नहीं तो कभी की निकल लेती। खानदानी घर से हूँ इसलिए रह रही हूँ, नहीं तो कभी की निकल लेती। पति अगर बर्तन होता तो कभी का बदल देती, कभी का बदल देती, कभी का बदल देती। बहुत बहुत धन्यवाद
दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने सुना कमल धमीजा जी की गज़ल सुनी, हमने निर्देश निधि जी की फ्री वर्स कविता सुनी, हमने भूपिंदर जी की सहज सरल कविता सुनी, और हमने मदन लाल राज जी का चुटीले छोटे छोटे दो व्यंग सुने। मैं सभी रचनाकारों को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ मैं आप सभी का। रस्मन अदायगी के लिए मुझे भी कुछ पढ़ना होगा, मैं एक छोटी सी गज़ल आपके सामने रखता हूँ। मतलब यूँ है दोस्तों, सुना है आजकल वो घर से बेहद कम निकलता है, सुना है आजकल वो घर से बेहद कम निकलता है, निकलता भी है तो आँखें लिए पूर्णम निकलता है। सुना है आजकल वो घर से बेहद कम निकलता है, निकलता भी है तो आँखें लिए पूर्णम निकलता है। शेर मुलाहिजा हो, भरोसा टूटने का गम अगर बस जाए सीने में, भरोसा टूटने का गम अगर बस जाए सीने में, तो सुनते हैं कि दम के साथ ही ये गम निकलता है। भरोसा टूटने का गम अगर बस जाए सीने में, तो सुनते हैं कि दम के साथ ही ये गम निकलता है, तो सुनते हैं कि दम के साथ ही ये गम निकलता है। और ये शेर, अड़े हैं जिद पे दोनों कोई सा पीछे नहीं हटता, अड़े हैं जिद पे दोनों कोई सा पीछे नहीं हटता, ना उनका दिल पिघलता है ना मेरा दम निकलता है। अड़े हैं जिद पे दोनों कोई सा पीछे नहीं हटता, ना उनका दिल पिघलता है ना मेरा दम निकलता है। और ये शेर भी मुलाहिजा कर ले, कुदरत से लिया गया शेर है। गुलों से तितलियां लिपटी हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, गुलों से तितलियां लिपटी हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, चले आओ चले आओ हंसी मौसम निकलता है। गुलों से तितलियां लिपटी हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, चले आओ हंसी मौसम निकलता है, हंसी मौसम निकलता है। और मक्ता गज़ल का पेश खिदमत है। नसीम अपना ही किस्सा छेड़ बैठा रात महफिल में, नसीम अपना ही किस्सा छेड़ बैठा रात महफिल में, लगा जैसे कोई लावा तहे शबनम निकलता है। नसीम अपना ही किस्सा छेड़ बैठा रात महफिल में, लगा जैसे कोई लावा तहे शबनम निकलता है। भरोसा टूटने का गम अगर बस जाए सीने में, तो सुनते हैं कि दम के साथ ही ये गम निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आज के इस एपिसोड में भाग लेने वाले सभी रचनाकारों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और आप सभी सुधी श्रोताओं का, दर्शकों का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।